نحمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق نمبر 205 آیت نمبر 20 سے 34 سورة لقمان تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 20 سے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ ہے پہلی نعمت دوسری نعمت وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اور تمام کر دی اس نے تم پر ہر قسم کی نعمت ظاہری بھی اور باطنی بھی لیکن اس کے برعکس کچھ بدقسمت ایسے ہیں کہ اتنی نعمتوں کو پانے کے باوجود ان کے رویے کیا ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اور بعض ایسے نادان بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب یہاں سے سبق کا آغاز ہے پچھلی آیتوں میں لقمان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ ایک خوبصورت معاملہ تھا کہ انہوں نے ان کو نصیحتیں کی اب دوبارہ قدرت کی طرف اشارہ ہے سورت کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو اس بات پہ تنبیہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت ہے تم اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتے اور اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو پھر وہ تمہیں پکڑ کے رہے گا یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جس پر غور کی دعوت دی گئی پہلی چیز ہے سخر لکم اس نے مسخر کیا تمہارے لیے لفظ سخر یسخر تسخیر اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو ایسے کام پر پابند کرنا یا تابع کرنا مجبور کرنا جو وہ کرنا نہ چاہے یا کرنا چاہے یعنی تابع فرمان کے معنوں میں آتا ہے مسخر کرنا اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں کہ فلاں تو ناقابل تسخیر ہے یہاں زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کائنات کی ہر چیز وہی کرتی ہے آسمان کھڑا ہے زمین بچھی ہے سورج گھوم رہا ہے چاند رات کو آتا ہے دن میں سورج آتا ہے سب وہی کر رہے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تابع ہے حکم کی بندھی ہوئی ہے بامقصد ہیں ایک مقصد کے ساتھ چل رہی ہیں سسٹم کے ساتھ چلتی ہیں ایک مطلب سخرہ کا یہ ہے اور دوسرا سخر لکم کا معنی کیا ہے کہ انسان تمہارے فائدے کے کام کرتی ہیں وہ چیزیں کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کام کس کے لیے کرتی ہیں انسان کے لیے کرتی ہیں آگ کس کے گھروں کو جلاتی ہے کس کے کھانے پکاتی ہے مٹی کس کی پیداوار کو نکالتی ہے معدنیات سے فائدے کون اٹھاتا ہے مویشیوں کا دودھ کون پیتا ہے اے انسان تو پیتا ہے تو پھر ذرا غور تو کر کہ جس رب نے تیرے سامنے اتنی کائنات جھکا دی سجا دی پھر تو اس کے تابع کیوں نہیں ہوتا پھر اے انسان تو کیوں اپنے نفس کے تابع ہوا ہوا ہے انسان کیوں تو دنیا سے ڈرتا ہے تو معاشرے کا تابع تو خاندان کا رسم و رواج کا پابند ہے تو پھر میرا تابع کیوں نہیں ہوتا ہم سب غور تو کریں کتنا کچھ ہے ہمارے لیے ان میں سے کوئی ایک چیز صرف کام کرنا چھوڑ دے وہ کہ میرا موڈ نہیں رہا صرف زمین کا موڈ بدل جائے اور فصلیں اگنی ختم ہو جائیں انسانوں کا کیا حال ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے تو طوعاً و کرہاً ہر چیز کو اپنا تابع کر ہی لیا اب انسان خوشی سے کرے گا تو دل بھی خوش ہوگا آج نہیں آتا کل بلایا جائے گا آج حی علیہ الصلاح کی آواز سن کو قدم نہیں اٹھتے کل سور کی آواز سن کے تو بہرحال آنا ہی پڑے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کر لو کسی چیز کو جبرن اور قہرن کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کار کر دینے کو تسخیر کہتے ہیں مسخر کر دیں تسخیر کر دیں تمہاری دسترس میں کر دیں وقت کے ساتھ سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اس طرح کھلتی جا رہی ہیں کہ واقعی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے دوسری نعمت وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ اسبغا کا لفظ جو ہے مکمل کرنے کے لیے آتا ہے اسباغ اللہ نے مکمل کر دیا ادھوری دنیا نہیں تم کو دی ادھورا بچہ نہیں دیا تم کو मुकम्मल दिया। और कैसी नेमा हो, नेमा नेमत की जमा होती है, नाम पीछे भी हम पढ़ चुके, सारी नेमतें पूरी कर दी। ये नहीं कि कुछ दी कुछ नहीं दी, आंखें दी तो बसारत नहीं दी, देख रहे हो लेकिन थोड़ा देखते हो, सुनते हो मगर थोड़ा सुनते हो, हर चीज़ को एतदाल से रखा। कुछ नेमतें तो जाखिरतन जाहरी हैं और कुछ बातिनतन बातनी हैं। अब जाहिरा और बातिना नेमतें क्या हैं, नाम से वाज़े है। जाहरी नेमतें वो हैं जिनका इदराक हवास से हो सके, मादी नेमतें आंखें कान जुबान दिल दिमाग, जिनको हम देखते जिनको महसूस करते, हमारा रिज्क हमारी शक्लो सूरत आफियत, ये सारी चीज़ें जाहरी हैं। इसी तरह बातिनी नेमतें क्या हैं जिनका इदराक हम कर नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ तो ज़िंदगी है, हम आज तक ज़िंदगी को डिस्कवर ही नहीं कर सके, इसकी रूह कहाँ से आई, अंदर कहाँ से गई, क्या हुआ, समात कैसे काम करती है, बसारत कैसे काम करती है। आप यूं कह सकते हैं कि कान ज़ाहर में हम देख सकते हैं, हम सब अपने कान देख रहे हैं, समात कैसे देखेंगे, कैसे आवाज़ कानों तक टकराती है, हवा में लहरें पड़ती हैं हमारे कानों पे जाके पड़ती हैं फिर आवाज़ सुनाई देती है, नहीं पता। गला मौजूद है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, जुबान मौजूद है, मखारिज कहाँ से निकलते हैं। हर वो चीज़ जो जाहिर में दिखती है उसका एक बातनी पहलू भी मौजूद है। इसी तरह जाहरी और बातनी नेमतों के फ़र्क में एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है। सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी जाहरी और बातनी नेमतों से क्या मुराद है, तो फरमाया जाहरी नेमत इस्लाम है, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दे दिया, और बातनी नेमत ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। कितने गुनाह अल्लाह ताला हमारे छुपा लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। दूसरों के सामने हम कैसे होते हैं, अकेले में हम कैसे होते हैं। हर वो नेमत जिसका ताल्लुक दिल से है वो बातनी नेमतों में आती हैं, जिसमें सबसे पहले ईमान है, अल्लाह की मार्फत, इल्म, हिकमत, अकल, हुस्ने खुल्क, गुनाहों की पर्दापोशी, जरायम पर फौरन सजा न मिलना। अल्लाह तलायन वक्त पे मोमिन को इल्हाम के ज़रिए से गुनाह से बचा लेते हैं, फल हमहा फजूरहा व तकवाहा। फिर अल्लाह के नबी की मोहब्बत, आपके साथ एक अजीब मामला महसूस करना। देखा जाए तो हम अंदर बाहर से बहुत सारी नेमतों में जकड़े हुए हैं, कभी सोचा भी नहीं। आप ज़रा अपने इस 5-6 फुट के जिस्म पे देखें कितनी ज़ाहरी नेमतें हैं, शीशे में खड़े होते हैं कितना कुछ देखते हैं। अब अगर अल्लाह की इस नेमत की रोशनी में देखेंगे तो फिर नाफरमानी तो नहीं हो सकती। और जिस्म के अंदर देखना है तो सिर्फ आप एक कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें कि जिसमें इंसान के अंदर के मुख्तलिफ अज़ा को बताया गया हो। ये जज्बात क्या है, बच्चे को देख के मोहब्बत का उमड़ना क्या है, शोहर और बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत क्या है, माँ बाप के लिए एक रिस्पेक्ट जो दिल में आती है, ये क्या। हम तो ऐसे लगता है नेमतों के धागों में बंधे हुए हैं, पूरी सूरत हमें शुक्र सिखा रही है, शुक्र शुक्र, नेमतों को पाओ और शुक्र अदा करो। लेकिन बदकिस्मत लोग, बदबخت लोग फिर भी झगड़े ही करते हैं। वमिनन नास मन युजादिलु फिल्लाह, अल्लाह के मामले में झगड़ने की क्या बात है। 3 किस्म का झगड़ा होता है अल्लाह के मामले में। इससे पहले हम सूरत हज में भी झगड़े की बात पढ़ चुके कि कुछ लोग सारा कुछ सुन सुना के फिर अल्लाह की ज़ात पे झगड़ते हैं। पहली बात तो अल्लाह के बारे में झगड़ा क्या है इंसान का, कि अल्लाह है भी कि नहीं, आज तक यही नहीं समझ आई, अकेला है या उसके साथ दूसरे हेल्पर हैं। दूसरा झगड़ा होता है अल्लाह ताला के हुक्मों पे झगड़ा करना, जो उसने कहा है करो वो नहीं करना चाहते, क्या करें क्या ना करें, किस तरह करें, ये है वो है। तीसरा झगड़ा है अल्लाह के बारे में कि उसकी औलादें मुतय्यन करना, जैसे कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, सूरह तौबा में हम पढ़ चुके, यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा ने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जिनको नहीं मानना वो झगड़ते झगड़ते दुनिया से गुजर जाएंगे। चलें दुनिया में झगड़े हो सकते हैं दलाइल की बुनियाद पे, हुज्जतबाजी हो सकती है, लेकिन इनके झगड़े हैं बग़ैर इल्म, इल्म के बग़ैर झगड़े करते हैं। आप इल्म वालों के झगड़े तो देखें, आप बेइल्मों के झगड़े देखा करें, किसी महफिल में जाके सिर्फ लोगों को मजहबी गुफ्तगू करते देखा करें, मैंने ये सुना है, मैंने ये कहा है, मुझे ये पता है, मेरी माँ ये करती थी, कर सकते हैं, बेतुकी हांक रहे होते हैं, किसी के पास कोई दलील नहीं होती और सारे लोग दीन की बातें करते हैं बगैर इल्म के, हिदायत और किताबे मुनीर के। तीन चीजें इसको हाईलाइट कर लें, कहीं भी झगड़ा अगर करना पड़ जाए किसी से किसी मामले में, या इल्म उसकी दलील हो, कोई हुदन हिदायत की बात हो, कोई एविडेंस मौजूद हो और किताबे मुनीर। इसके बगैर तो सिर्फ अफकार हैं और नज़रियात हैं और इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्चुअल बन के जो मर्जी करें, आप नमाज की बजाय प्रेयर करते रहें, हज की बजाय आप वो पैसे गरीबों में देते जाएं, कुर्बानी की बजाय आप लोगों को हॉस्पिटल बना के देते रहें, झगड़े ही झगड़े हैं। असल सोर्स यही है जिसका तस्करा किया। और झगड़े की एक बहुत वाज़े सूरत जो हर मुआशरे में होती है, कब? जब नया नया दीन आता है। और वो क्या? वह इज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अन्ज़लल्लाह। और जब इनको कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया, जो अल्लाह ने उतारा, यानी तुम्हारी बेइल्मी, तुम्हारे हिदायत से दूर होने, तुम्हारे पास किताबे मुनीर ना होने को अल्लाह ने अब दूर कर दिया, अब अल्लाह ने किताब दे दी, रोशनी दे दी, क्या अब इसके बाद भी तुम इससे दूर रहोगे? नहीं, मानजल्ला पे आ जाओ। कालू, कहने लगे, बल न तबियु मा वजदना अलैहि आबाअना, कहने बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उनकी जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। हम तो वही करेंगे जो सब करते थे। हम रिवायात के गुलाम हैं, हम उसी डगर पे चलेंगे जिस पे हमारे बड़े बेइल्मी की वजह से चलते थे। हम इल्म पे आने के बावजूद भी उन्हीं के तरीके पे चलेंगे, आंखें बंद करेंगे। कहा, अच्छा, अवलौ कान शैतान यदउहुम इला अज़ाबिस सईर, क्या वो इन्हीं का इत्तबा करेंगे? ख्वाह शैतान इन्हें इस तरह दावत दे रहा हो भड़कते हुए अज़ाब की। यानी ये जो बहकी बहकी बातें हैं कि बाप दादा का नाम लेकर दीन की कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे, जिसकी दलील मिल गई, जिसकी हिदायत मिल गई, जो किताबे मुनीर की रोशन आयतों में मिल गई, जो कुरान के नूर से मिल गई, नहीं लेंगे? चलो ठीक है, ना लो, लेकिन जहन में रखो कि शैतान भड़कते हुई आग की तरफ तुम्हें बुला रहा है। कितनी ज़बरदस्त आयत है! ऐसे लगता है कि खोल के रख दिया अल्लाह ताला ने शऊर को, कि जो बेसोचे समझे तकलीद करते हैं बड़ों की, अच्छे बुरे के फ़र्क के बरक्स, वो लोग जो हैं शैतान के कदमों पे चलकर जहन्नुम में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान का अपना नसीब भी तो आ गई है ना। क्या करें फिर? वमई युस्लिम, और जो कोई मुसलमान हो जाए, जो स्पुर्द कर दे वजहहू इलल्लाह, अपना चेहरा अपने आप को अल्लाह के, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे, ये पहला दर्जा होता है। मुआशरे के, ख़ानदान के, बिरादरियों के सपुर्द करने की बजाय अल्लाह के सपुर्द कर दो खुद को। हमारे यहाँ एक आम लफ्ज़ बोलते हैं अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, सपुर्दे खुदा। कभी अमली तौर पे देखें कि हम वाकई खुद को अल्लाह के सपुर्द करते, करके देखिए, फिर खुशी और इत्मीनान को पाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसके बगैर तो ज़िंदगी वाकई बिल्कुल बेमानी थी। शर्त क्या है? वहुवा मुहसिनन, और इसके बाद फिर वो मुहसिन भी हो। पहला दर्जा होता है मुस्लिम का, तस्लीम, युस्लिम, सलाम, सारे मामलात अल्लाह के हवाले, दिल को, जिस्म को, रूह को, मामलात को, तवक्कुल, शुक्र, सब्र, हर बात अल्लाह की, जो अल्लाह कहेगा वही करूँगी। ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़ुबान में कोई कह दे, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, जो आपकी मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी, जो आप खिलाएंगे मैं खा लूँगी, जो आप पहनाएंगे मैं पहन लूँगी, जो आप नहीं देंगे वो नहीं मांगूंगी। इस किस्म की खुद सपुर्दगी, इसका नाम है इस्लाम। मुस्लिम अड़ी करने वाला नहीं होता, उस ऊँट की तरह नहीं होता कि जो अपने मालिक ही के सामने गुर्रा रहा है और उसको कदमों के नीचे रौंद दे। शर्त क्या है? कि बंदा अपनी सोच को, अपने चेहरे को, अपनी शक्ल को, अपने हाल हुलिये को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने रहन सहन को अल्लाह के हवाले कर दे। ये एक पूरा कल्चर है। आप देखिए कि दुनिया में कोई किसी के सपोर्ट कब करता है? सबसे पहले तो बच्चा अपना आप माँ बाप के सपोर्ट करता है ना, उसको पूरा यकीन होता है ना कि मेरी माँ मुझे गिराएगी नहीं, इसलिए बच्चा बड़े आराम से माँ की गोद में लेटा रहता है। आप उसी इमेजिनेशन को सामने रखें कि किसी पे नज़रें लगी हुई हैं, अल्लाह पे नज़रें लगा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और कोई तुम्हारा कुछ नहीं ले सकता, किसी से इज्जत नहीं मिलेगी, किसी से प्यार नहीं मिलेगा, किसी से रिस्क नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रब से मिलेगा। जब हम रब पे नजरें लगाते हैं ना, तो अल्लाह दूसरों के दिलों में खुद ब खुद डाल देता है कि वो आपके लिए कुछ करे। हवालगी, सबमिशन, वो रवैया अख्तियार करो जो अल्लाह को पसंद है, फिर देखो आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन के दर्जे पे पहुंचोगे। और मोहसिन क्या है? जो हजरत जिब्राइल की हदीस में आता है, क्या एहसानो अंता बुदुल्लाह का अन्नक तराखू, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो। कोई एक नमाज ऐसी पढ़ी है जिसमें अल्लाह दिखने लग जाए? फाइलम तकुन, और अगर ऐसा ना हो सके, अभी उस दर्जे तक नहीं पहुंचे, तो फिर एक बात याद रखो, फाइलम तकुन तराहू फइन्नहू यराक, तो वो तो तुमको देखता है। ये है मुहसिन होना। ये वही बात है जो पीछे लुकमान ने अपने बेटे को कह दी थी कि बेटा अगर तुमने इन तक मिसकाल हब्बत मिन खरदरिन फतकुन फी सखरत नौ फिस समावाती औ फिल अर्द याति बिहल्ला, अल्लाह उसको ले आएगा। ये है वो कैफियत जो बंदे को मुहसिन बनाती है। मेरा कुछ भी तो जाया नहीं गया, चार कदम ज्यादा चलने पड़े ना गलती से, वो भी मेरे अल्लाह ने लिख लिए। मेरा वक्त ज्यादा लग गया, अल्लाह ने वो भी लिख लिया। मेरा माल ज्यादा लग गया, अल्लाह ने वो भी लिख लिया। मेरा क्या गया? दुनिया में कोई इंसाफ नहीं कर सकता, दुनिया में कोशिश के बावजूद नहीं कर सकता। अल्लाह की जात है जिस पे नजरें लगाई जाएं और वो बंदे को पूरे अजर देगा। हम सब यहाँ कुरान पढ़ते हैं ना, हमारे नज़रों में तो ये कि हम सब एक ही काम कर रहे हैं, हम सबको बाद में एक ही डिग्री मिल जाए, हम सब के नंबर हमारे लिखे हुए पेपर्स की सूरत में आ जाएं। इज़ इट फेयर? इट्स नॉट फेयर। अल्लाह के यहाँ तो एक एक नुक्ते का अजर है, एक एक कदम का अजर है, एक एक कुर्बानी का अजर है, हमारे एक एक एक्शन का अजर है। जिसको ये यकीन होता है, फिर वो दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करता है, और जो बेहतर करता है वो महफूज हो जाता है, वो बच जाता है। फ़कद इस्तमसक बिल्उरवतिल वुस्का, तो बेशक उसने मजबूत पकड़ लिया मजबूत हल्के को। उसने फिर इस तरह का हल्का पकड़ा, क्या वो अल्लाह की किताब से नहीं टूटेगा, वो अल्लाह के दीन से नहीं छूटेगा। अल्लाह का किताब, अल्लाह का हल्का ना टूटता है ना छूटता है। पीछे हम बात कर चुके, ला इकराह फ़ि दीन क़द तबय्यना रुश्द मिन अल-ग़य, अल्लाह ने रुश्द को गई से बिल्कुल अलग कर दिया। 20-22 पारे पढ़ने तक हकीकत खुल के सामने आ गई हमारे। अगर आप में से कोई बंदा पूरे पिछले 21 पारों की इतनी आयतें पढ़ चुका है और इसको अभी तक नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, यानी ये ज़रूरी है, इसके बगैर ज़िंदगी ख़त्म, जिसको आप कह सकते हैं कि ये लाइफ सेवर दवाई है, इसके बगैर मैं जीऊँगी नहीं, अगर नहीं पता चला तो वाकई फिर उसको आगे भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इतना कुरान पढ़ने के बाद ये तो अच्छी तरह पता चल चुका होता है कि इसके बगैर अब ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर रहम आता है, तरस आता है। आप कभी कुछ लोगों को देखते हैं बड़े कुरान के साथ जुड़े होते हैं, जमे होते हैं, फिर किसी मजबूरी से बेचारे पीछे हो जाते हैं। फिर कभी आप उनको कुछ देर के बाद देखें, वो रंग ही नहीं चेहरे पे, वो लज्जत नहीं, वो खुशी नहीं, वो सुकून नहीं। कुरान तो कितना प्यारा हुसन दे देता है इंसान को कि किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं होती। फिर इंसान लुढ़कता पुढ़कता हवा के दोष पे, हालात के धारे पे बहता है। ऐसा इंसान असल में अपने हाथ से उरवतुल वुस्का को छोड़ता है। आप देखेंगे दिन ब दिन नमाज कमज़ोर होगी, दिन ब दिन सुकून कम होगा, दिन ब दिन वक्त के साथ दुनिया में घर में रहते वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में आने लगती हैं जिनसे कुरान की मसरूफियत ने हमें रोका हुआ था। और अगर ना भी हो तो इलाल्लाही आकिबतुल उमूर, अल्लाह ही की तरफ सारे कामों का अंजाम है। सब कुछ उसके हाथ में, उससे रूगरदानी करके कोई जाएगा भी किधर? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुरान से जमे होते हैं, फिर अचानक पीछे हट जाते हैं, फिर छुप जाते हैं, कोई रब्ता नहीं, कोई फ़ोन नहीं सुनता, कोई मैसेज पास नहीं करता, रिप्लाई नहीं करते, जवाब नहीं कोई आता। कब तक? एक वक्त आएगा। वइलल्लाही आकिबतुल उमूर, मैदाने माक्षर बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा तो नहीं, वहाँ तो सबकी मुलाकातें होनी है। किस किस के साथ मुलाकातें होंगी? कभी भी इंसान किसी इंसान को ज़ाती वजह से या किसी मजबूरी की वजह से छोड़े, रब्ता ना तोड़े, इस सोच के साथ कि कल तो पलट के आना है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोग अल्लाह की तरफ आएंगे। ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ रहे थे लोग, बहुत सारे लोग थे, हाथ में जंजीरें थीं जिसकी वजह से ऊपर से कंट्रोल था, कड़े उसके आगे लगे हुए। इतने में किसी एक के हाथ से कड़ा छूटने लगा और वो नीचे गिरने लगा, लेकिन दूसरों ने गिरने ही नहीं दिया। यूं हाथ आगे किए, यूं अपने आप को रिस्क में रख के एक हाथ छोड़ दिया, लेकिन दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिया, फिर आ जाएगा ऊपर। लेकिन जब ऊपर चढ़ने वाले ये कि चलो अच्छा है, हस्कम जहां पाक, हमारे मुकाबले से निकल गया, अब हम ही जीतेंगे, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्राइस हमें अब मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वो कोई कोशिश नहीं करेगा। सच्चे मोमिन जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए सीसा पिलाई दीवार होते हैं। कान न हो बन जान मरसूस, मोमिन कभी लिया दिया नहीं रह सकता। और इस तरह की कैफियत इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाती हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह के इस मज़बूत कड़े को नहीं छोड़ना। वो हमने बात की थी उर्वतुल वुस्का क्या है, मज़बूत कड़ा, फ़कद इस्तमसका बिलुरवतिल वुस्का। दोबारा यहाँ दे दी बात, क्यों, कि शऊर के साथ रहना। एक ख़तरा इंसान की ज़िंदगी में कब होता है, ख़ास तौर पर इल्मी ज़िंदगी में, जब वो कुरान से नया नया जुड़ता है, वो चीज़ रच ही नहीं पा रही। जैसे नया गुर्दा लगता है ना जिस्म में, तो कई महीने फिर उसको अंदर रखते हैं इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक काम कर रहा है, किसी को आर्टिफिशियल दिल लगा दें, जिगर लगा दें, तो बहुत केयर करते हैं कि ये मैच कर रहा है। कई लोगों का देखा गया, कई कई बार ऑपरेट होते हैं, नहीं अब ये मैच नहीं हो रही। फिर एक वक्त आता है, सेटिंग हो जाती है। पहला वक्त ज़िंदगी में वो बहुत मुश्किल होता है, जब हम अपनी ख्वाहिशों के अंधेरों से निकल कर कुरान के मज़बूत कड़े को थामते हैं। अल्लाह ने तीसरे पारे के बिल्कुल आगाज़ में हमें कह दिया कि जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को पकड़ा, फ़कद इस्तमसका बिलुरवतिल वुस्का, फिर दिल जमने लगता है, अच्छा शुक्र है, नहीं नहीं अल्लाह मैं इस किताब को नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी ज़िंदगी में इसको एडजस्ट करूँ। फिर बीच के कुछ महीने, कुछ पारे बंदा फिर जमा रहता है, एक फिर ख़तरा आता है, और वो है जब पारे थोड़े रह जाते हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी, बहुत लंबा हो गया कोर्स, बहुत लंबा वक्त गुजर गया, वक्त भी तो बहुत लंबा है। कभी किसी को आप मेडिकल से निकलते हुए नहीं देखेंगे कि बहुत लंबी पढ़ाई हो गई, किसी को मास्टर्स के पेपर्स को छोड़ते हुए नहीं देखेंगे, किसी को यूनिवर्सिटी को छोड़ते नहीं देखेंगे। 16 साल, 18 साल, 20 साल, 15 साल, आप देखते जाएं कितनी कुर्बानी है, फिर सारी ज़िंदगी कुर्बानियाँ, हर 2-4 साल के बाद रिफ्रेशिंग कोर्स, अपडेट्स, जॉब्स, डॉक्टर्स, उनको आवर्स लेने पड़ते हैं मज़ीद। लेकिन अल्लाह की किताब 30 पारे इतने मुश्किल होने लगते हैं कि पहले भी छूट रहे थे, फिर अब छूटने लगे, क्या करें, फिर अब और तो नहीं कुर्बानी दे सकते। ये किसकी कैफियत होती है, जिसके दिल में शुक्र की कमी है। याद रखें, शुरू में कहानी और है, एक दफ़ा नेमत को पा के जो छिनती है ना, ये अल्लाह का वादा पूरा होता है, लाइन कफर तुम इन आज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे मैं दूर कर दूंगा। वजह कोई भी हो, इससे किसी को सरोकार नहीं है। वइलल्लाही आक़िबतुल उमूर, अल्लाह की तरफ ही इंजाम है पलटने का, हर एक पलट पलट के दिन रात उसकी तरफ जा रहा है।